नारायण नारायण नारायण।
धर्म स्थापन ये रामा अवतार की विशेषता है। भक्ति और प्रेम प्रसाद वितरण ये कृष्णा अवतार की विशेषता है। शांत परमात्मा में विश्रांति और भक्त को उपदेश मात्र से मोक्ष देने वाला अवतार शुकदेव जी का माना गया है, समाधि अवतार। नारद जी का चलते फिरते प्रेम अवतार, प्रसाद वितरण, प्रेम प्रसाद वितरण अवतार माना गया है। दत्तात्रेय महाराज का अवधूत अवतार माना गया और सनत कुमार आदि का ब्रह्मचर्य अवतार माना गया है। ज्ञान अवतार, शक्ति अवतार, वैराग्य अवतार, इन अवतारों के पीछे भगवान की सर्वकला सर्व सामर्थ्य और सर्वहितकारिता प्रकाशित होती है, पुलकित होती है, परिचालित होती है। सेठ ने तो फैक्ट्री बनाई और मुनीम चला रहे हैं, लेकिन यहां दुनिया बनाई और किसी को चलाने को दे दी, ऐसा वेदांत शास्त्र में अथवा भागवत रामायण आदि में स्वीकार नहीं। जो भक्त की पुकार सुनकर मदद करने को ना आए वो भगवान किस बात का। जो प्रेमी का प्रेम झेलने को अवतरित ना हो वो प्रेमास्पद किस बात का। जो सृष्टि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने बलपूर्वक आवश्यकता के अनुसार फेरफार न कर सके वो सृष्टिकर्ता कैसा। तो सनातन धर्म में भगवान को सृष्टि का कर्ता भी माना गया है, भक्तों का भगवान माना गया है, प्रेमियों का प्रेमावतार माना गया है, दुष्टों का दमन करने वाला भी माना गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे, ये भगवान का गीता में वचन। भगवान के कभी भी कहीं भी किसी भी आवश्यकता के अनुसार अवतार धारण करने का सामर्थ्य। वल्लभाचार्य संप्रदाय में अर्चना अवतार माना गया। किसी ने हनुमान जी को कुछ का कुछ कहा और इतना आवेश में आ गया कि लेकर हथौड़ा और हनुमान जी का सिर तोड़ने को उद्यत हुआ। भक्तों ने आक्रांत किया और भगवान का वह वैभव चमका कि वह हथौड़ा उठाए, मूर्ति का सिर तोड़े, उसके पहले मूर्ति हिली, प्रकाश निकला और हनुमान जी का आकृति में अवतरण हुआ और उसको आतताई को मार गिराया। ये अर्चना अवतार, कभी मूर्तियां दूध पी लेती है, कभी मूर्ति में से प्रेरणा मिल जाती है, भक्ति बढ़ गई और गए मंदिर में मूर्ति के सिर पर से अथवा गले पे से अथवा किसी जगह से पुष्प का गिरना, फूल का गिरना, माला का गिरना, ये अर्चना अवतार की महिमा है। रामानुजाचार्य तीन अवतार मानते हैं, प्रभाव अवतार, वैभव अवतार, अर्चना अवतार। अवतार उसे कहा जाता है जो ऊपर की स्थिति को छोड़कर नीचे आकर सुव्यवस्था जमा दे, उसे अवतार कहते हैं। अवतरति इति अवतार। तो जब जब जहां जहां जैसे जैसे बदलाव की जरूरत होती तो भगवान निर्गुण निराकार वहां प्रकट हो जाते, अथवा रामावतार का, कृष्णावतार का, अथवा संत अवतरण का, अथवा संत अंतःकरण का उपयोग करके भगवान सुव्यवस्था करते रहते। अभी आप और हम यहां बैठे और मिले हैं, इसमें भी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अथवा किसी संस्था का प्लानिंग नहीं है। यहां भी भगवान के करुणा कृपा और भगवान के संकल्प का ही अवतरण है। जितना आप अंतर्मुख होते हैं, जितना आप सूक्ष्म होते हैं, उतना आप विभू हो जाते हैं। पानी की एक बूंद बाष्पीभूत होकर 1300 गुनी ताकत वाली हो जाती। तो जितना जितना आप उस परमेश्वर स्वभाव में जाते हैं, परमेश्वर प्रसाद में जाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, उतने उतने आप विभू होते जाते हैं। तो संत लोग जन्म दिवस पर आपाधापी या मिलन जुलन कम करके भी उस विभू स्वभाव में होकर बहुत दूर दूर तक भक्तों के बीच अपनी आत्म उपस्थिति का एहसास और अनुमोदन अथवा मदद पहुंचाने की जो कुछ उनकी सेवा है। जैसे साधारण आदमी दिया जलाता है और मैं दिया जलाता हूं, या कर्म करता है तो मैं कर्म का करता हूं, ऐसा सूर्य नारायण को कभी नहीं होता है कि मैं प्रकाश का देने वाला हूं और मैं दौड़ भाग कर रहा हूं। ईश्वर संकल्प से ईश्वर के साथ अपने मैं को एकाकार करके सूर्य नारायण चलते रहते हैं, चंद्रदेव चलते रहते हैं। प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो प्रणव सर्ववेदेशु शब्द खय पुरुषम दृशु, गीता ने कहा। सूर्य में, चंद्रमा में मेरी प्रभा है, मैं ही हूं। और वेदों में ओमकार मंत्र मैं हूं। शब्द खय पुरुषम ऋषु, आकाश में जो शाश्वत शब्द है वो मैं हूं। तो उस परमात्मा को कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में अवतरित होकर सुव्यवस्था करने में अड़चन नहीं आती। इसमें कई अंशावतार माने गए, कई आवेश अवतार माने गए, कई प्रेरणा अवतार माने गए, कई नित्य अवतार माने गए, कई नैमित्तिक अवतार माने गए। संतों को नित्य अवतार में माना गया है कि कभी न कभी कहीं न कहीं संत होंगे और उनके हृदय में भगवान अवतरित होकर समाज को सही ज्ञान और सही आनंद का धोद फैलाते हैं। फिर उनके नाम पर, धर्म के नाम पर कितना भी कहीं कुछ भी चलता रहता है, फिर भी संत अवतरण के कारण ये समाज में भगवत सत्ता, भगवत प्रीति, भगवत ज्ञान, भगवत अर्पण बुद्धि के कर्मों का सिलसिला भगवान चलवाते रहते। तुकाराम महाराज संत अवतार में माने जाते थे। वे दिन भर शांत भगवत सत्ता में राम राम राम, जो रोम रोम में रम रहा है वही सार है। मैं कुछ भी नहीं, उनका मैं परमात्मा में विलय हो चुका था। दिन भर तो समाधि में और रात्रि को भक्तों के बीच तुकाराम महाराज सत्संग आदि करते। वे जब शौच जाते तो भी राम राम राम। तो एक कर्मठ उस समय के प्रसिद्ध विद्वान ने कहा कि क्या अनुचित कर रहे हो, भगवान का नाम और शौच जाते समय अपवित्र काम के समय, ये नहीं करना है तुमको। तुकाराम जी चुप हो गए तो मौन का राम राम इतना प्रभावशाली हुआ कि वो विद्वान कांपने लगा। तुकाराम के चरणों में जा गिरा कि आप बोलिए, आप विधि और निषेध से परे हैं, आपको जप करना नहीं पड़ता है, जप आपका स्वभाव है, सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा आपका स्वभाव है, लोगों का भला आपको करना ही नहीं पड़ता, जैसे सूर्य को प्रकाश देने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही आपको लोगों का मंगल करना नहीं पड़ता है, ईश्वर अवतरित हुआ है, हो रहा है, आपके लिए विधि निषेध नहीं है। तो जिन्होंने शरीर को मैं माना है वे समझते कि मेरा जन्म भी हुआ है, मैं बड़ा भी हो रहा हूं, बूढ़ा भी हो रहा हूं, बालक हो रहा हूं, जवान हो रहा हूं, बीमार हो रहा हूं, तंदुरुस्त हो रहा हूं, वो अपने शरीर में मैं को मानते, ये जीव का जन्म है। और जो अपने चैतन्य को मैं मानते हैं ऐसे भगवान का अवतार होता है। और ऐसे चैतन्य को मैं मानने की जिनकी साधना यात्रा पूर्ण हुई है ऐसे महापुरुषों का भी अवतरण माना जाता है। तुकाराम महाराज जी का ऐसा ही अवतरण, नानक जी का, कबीर जी का ऐसा ही अवतरण मानने से बिल्कुल समाधान हो जाता है। साधु बाबाओं के पास एक गाली रहती है। कौन सी गाली? अरे बोले निगुरा है, ये गाली निगुरा है तो क्या है? बोले इसके पास गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु का ज्ञान होता तो मानता कि हमारे गुरु शरीर को मैं नहीं मानते, मन के दुख को अपना दुख नहीं मानते, बुद्धि के निर्णय को अपना निर्णय नहीं मानते, शरीर के बुढ़ापे, जवानी और मृत्यु को अपना नहीं मानते, तो ये गुरुओं के ज्ञान से संपन्न होता तो भगवान को भी अकर्ता मानता। जब गुरु को अकर्ता नहीं सुना, अभोक्ता और गुणातीत नहीं जाना तो भगवान को क्या जानेगा? बोले ये निगुरा, इससे सिर मत खपाओ। कबीर जी ने ऐसे लोगों को गाली दे दी, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। तो जो निगुरे हैं, जिनके कोई गुरु नहीं है और जिनको तात्विक ज्ञान नहीं है, वे मरने वाले, बदलने वाले, दुखी सुखी होने वाले अंतःकरण को और शरीर को मैं और मेरा मानते, लेकिन जिनके पास गुरु का ज्ञान है, भगवत प्रसाद है, भगवत कृपा है, श्री कृष्ण ने कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम, भगवत प्रसाद से सब दुख मिटाने की शक्ति आ जाती, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत्सो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। आज ये पक्का कर लो कि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वता, मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है, ऐसा जो मान लेता है उसका जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है, आप फायदा उठा। निगुरे लोग भले ना उठाएं लेकिन आप उसका फायदा उठाओ। जीवात्मा वासना के और पंचभूतों के अधीन होकर जन्म लेता है, कर्म बंधन में आकर जन्म लेता है, लेकिन भगवान पंचभूतों के अधीन, वासना के अधीन होकर जन्म नहीं लेते हैं, करुणा वरुणा कृपा के भाव से भगवान अवतरित होते। इसी प्रकार भगवत प्राप्त महापुरुष कारक पुरुष भी समाज की वो दयनीय दशा देखकर संकल्प से जब आ जाते तो उनका अवतरण माना जाता है। इसमें आवेश अवतार कुछ समय के लिए, जैसे परशुराम में भगवत आवेश था, लेकिन राम जी के दर्शन होने के बाद परशुराम का आवेश अवतार शांत हो गया, राम जी में समा गया। धर्म स्थापना करना, दुष्टों का विनाश करना, ये अनुप्रासंगिक कार्य है। लेकिन भक्तों के प्रेम को जागृत करना और प्रेम पान करके भक्तों पर प्रेम बरसाना, ये भगवान का रामा अवतार, कृष्णा अवतार आदि प्रेमी जनों के लिए संत अवतार, भक्त अवतार आदि होता रहता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वत, मेरा जन्म और कर्म दिव्य, ऐसा जो मुझे मान लेता है वो भी अपने जन्म और कर्म को दिव्य बना देता है। तो हमें क्या फायदा उठाना है कि जिस जो शरीर दिखता है उसका जन्म वास्तविक में हमारा जन्म नहीं है, और उसके कर्म वास्तविक में हमारे कर्म नहीं है। राग से, द्वेष से, वासना से प्रेरित कर्म धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे और भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनती जाएगी। जब भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनती जाएगी, बुद्धि के कई तरीके होते, सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, तामस बुद्धि। तामस बुद्धि तो शराब कबाब और दूसरों की निंदा, अशांति, अफवाह फैलाना, उसी में अपने को सुख और खुशहाल मानती। राजस बुद्धि संग्रह करो, खपे 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 खपे, उसका कहां अंत होगा कोई पता नहीं। सात्विक बुद्धि जरा जियो, जीने दो, कर भला हो भला। इन सात्विक बुद्धि वालों को जब सत्संग मिल जाता है तो भगवत प्रसाद जा बुद्धि बन जाती, और भगवत प्रसाद जा बुद्धि को और थोड़ी भूख लग जाए तो तत्व प्रसाद या बुद्धि बनकर ब्रह्मज्ञानी हो जाती। तो ऐसी मति के धनी लोग निर्लेप तत्व में रहते हैं। तो जन्म दिवस बधाई हो, पंचभूत सुखदाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो। इस प्रकार जन्म दिवस मनाते मनाते सात्विक प्रक्रिया करते करते साधक वहां पहुंच जाता है जहां भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम। बुद्धि योग किन को मिलता है? मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंतः परस्परम। मेरे में चित्त लगाते और मेरे में ही प्राण लगाते और मेरा ही चर्चा करते, उनके बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं, उनके जन्म कर्म दिव्य हो जाते हैं और वे मुक्त आत्मा हो जाते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू। इसमें शबरी भीलन जैसी छोटी व्यक्तित्व वाली बाई हो, चाहे मदालसा जैसी महान बुद्धिमान रानी हो, धन्ना जाट अथवा रहीदास चमार हो, चाहे राजा जनक अथवा सम्राट अश्वपति अथवा भगवान के पिताश्री हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटी जगह पर हो कि बड़ी जगह पे। मत चित्ता मत गदा प्राण बोधयंत परस्पर। आप चित्त मुझ में लगाओ, जहां से आपका मैं निकलता है वो मैं अगर देह में रहता है तो आप जीवात्मा, छोटे आत्मा, शूद्र माना, छोटी छोटी चीजों में जीने वाला शूद्र, छोटी छोटी चीजों में जीने वाला आत्मा। लेकिन इन छोटे छोटे चीजों में जीने पर भी आप सुबह शाम दोपहर बीच में उस महान तत्व में गोता मारा करें तो आप महान आत्मा बन जाएंगे। यही पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का। नाक शुद्र है, नाक के द्वारा मजा लिया। मूत्र इंद्री शुद्र है, उसके साथ जुड़कर मजा लिया। श्रवण इंद्री शुद्र है, उसके साथ जुड़कर वाहवाही का मजा लिया। त्वचा इंद्री शुद्र है, उसके साथ जुड़कर मजा लिया। वो तो कुत्ता भी जानता है। कुत्ता कुत्तियों का जो आपस में संभोग का सुख मिलता है, दूसरे व्यक्तियों को भी इन शुद्र इंद्रियों से वैसा ही मिलता है। लेकिन ये सब सृष्टि की परंपरा के लिए निमित्त बनकर फिर अपने घर में आ गए तो आप बन गए श्रेष्ठ आत्मा, दिव्यात्मा, भक्त आत्मा, साधक आत्मा, योगी आत्मा, भगवत आत्मा। जैसे जैसे इसमें भी आपकी रुचि और प्रगति। श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंद में के दसवें अध्याय में आया कि भगवान को दुख सुख होता है कि नहीं। जीवात्मा को तो दुख सुख होता है, हानि लाभ होता है, और बड़ा होता है, बालक होता है, शिशु होता है, किशोर होता है, युवान होता है, अधेड़ होता है, बुढ़ा होता है, और जीव तो मरता है। तो क्या भगवान को ये नियम लागू पड़ते कि नहीं पड़ते? बोले जो जीव को होता है वो ईश्वर को होता है, जो ईश्वर को होता है वो जीव को होता है। ईश्वर है तो किसका है? जब जीव होगा, जगत होगा, तभी तो कोई उसका ईश्वर होगा। जब जीव नहीं है तो ईश्वर किसका? एक व्यक्ति आए, बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं हेडमास्टर। कहां पर? कितने मास्टर हैं तुम्हारे पास? बोले मास्टर एक भी नहीं है। बच्चे कितने हैं तुम्हारे पास? बोले चार बच्चे। तो तुम हेड काय के बने? धड़ होगा तब हेड बनेगा, कुछ मास्टर होंगे तभी हेड मास्टर बनोगे। तो जीव आत्मा है और जगत है तो उसका परमात्मा है। कल शाम को बताया था कि तीन तत्व सृष्टि में है, एक तो जगत बनाने वाली प्रकृति, दूसरा जगत को सत्ता स्फूर्ति देने वाला परमात्मा, और तीसरा ये जीवात्मा, सुख दुख का भोक्ता और कर्म के करने वाला और स्वर्ग नरक जाने वाला। तो परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा। जीवात्मा तब तक है जब तक वो बेचारा अपने को खोजता नहीं। अगर अपने को खोजे तो जीवात्मा का पोल खुल जाता और परमात्मा में मिल जाता है। इसीलिए रमण महर्षि कहा करते थे कि अपने को खोजो। मन नहीं लगता है तो किसका मन नहीं लगता? दुख होता है तो किसको दुख होता है? मैं कौन हूं उसको खोजो। जब आप अपने मैं को खोजोगे ना तो बिल्कुल अपना मैं ढकोसला निकलेगा। आंखों ने देखा बोले मैं देख रहा हूं, मन ने सोचा बोले मैंने सोचा है, बुद्धि ने निर्णय किया बोले मेरा निर्णय है, सुखाकार दुखाकार वृत्ति पैदा हुई बोले मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, पापाकार पुण्याकार भाव पैदा हुआ बोले मैं पापी हूं मैं पुण्यात्मा हूं। जैसे केले के पात पात में पात, प्याज के पात पात में पात, ऐसे ही इस अहम में भी पात पात में पात होकर मैं बन गया है। अगर इस मैं को खोजोगे, आप काले हो कि गोरे? बोले कभी काला हूं कभी गोरा हूं। आप मोटे हो के दुबले? बोले गर्मियों में दुबला और सर्दियों में मोटा। तो फैट के साथ अपने को जोड़ दिया, रंग के चमड़े के रंग के साथ जोड़ दिया। आप धनी है कि निर्धन? तो तिजोरी के साथ जोड़ दिया। तो आपका जो मैं है बिल्कुल ढपोल ढकोसला है और वही दुख भाग पा रहा है। उसके दुखों का अंत जब तक अपने इस झूठे मैं को आपने नहीं मिटाया तब तक दुखों का अंत नहीं होता। धन कितना भी आ जाए दुख का अंत नहीं होगा, सत्ता कितनी भी आ जाए दुख का अंत नहीं होगा, सौंदर्य कितना भी आ जाए दुख का अंत नहीं होगा, दुनिया का ज्ञान कितना भी आ जाए दुख का अंत नहीं होगा। लेकिन अपने मैं का ज्ञान आ जाए अथवा ईश्वर की मैं का ज्ञान आ जाए, दुख टिकेगा नहीं और सुख मिटेगा नहीं। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो ये संतों का जो जन्म दिवस मनाते या अवतरण दिवस मनाते, इससे भी हमको समाज को ही फायदा है। भगवान की जयंतियां मनाते तो हमको ही फायदा है, रामनवमी मनाते तो हमको ही फायदा है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते तो हमको ही फायदा है। ऐसे ही संत महापुरुषों का जन्म आदि जयंती मनाते तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक संवादिता और अर्थ के वितरण का भी देखो तो देश भर की समितियों को जहां जहां है गरीबों की सेवा में लगने के लिए अपने तरफ से दिल खोलकर कापियां बटी, कितने हजारों के लाखों बच्चों में कापियां बटी, बाल संस्कारों में भोजन और कीर्तन आदि हुआ, समितियों ने अपना अपना उत्सव मनाया। उसमें एक समिति अभी मौका मिल गया तो यहाँ आ गई, बाकी दिल्ली में झूमेगी झुमाएगी तो वातावरण पावन करेगी। तो ये जो भी भगवान के निकट जाने की जो भी दुखों से छूटने की व्यवस्था है वो शास्त्रीय ढंग से ऐसे पर्वों के उत्सवों के अवतारों के निमित्त होती है। कुर्मा अवतार हुआ वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को संध्या काल में समुद्र में। वरुण अवतार हुआ भाद्र शुक्ल पंचमी मध्यान्होत्तर हरिद्वार में। नरसी अवतार हुआ वैशाख चतुर्दशी सायंकाल, मूल स्थान था मुल्तान। वामन अवतार हुआ भाद्र में द्वादशी मध्यान को प्रयागराज में। परशुराम अवतार हुआ वैशाख की तृतीया को मध्यान में जमनिया गांव में। रामा अवतार हुआ चैत्र शुक्ल नवमी अयोध्या में। कृष्ण अवतार हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मध्यरात्रि मथुरा में। बुद्ध अवतार हुआ पोष शुक्ल सप्तमी सायंकाल गया में। इस प्रकार जहां भी संतों का या भगवान का अवतरण हुआ तो वहां अभी भी जो कुछ थोड़ी बहुत वैभव सात्विकता सज्जनता आदि दिखाई देती है वो मानव जात के लिए हितकारी। जन्मदिवस बधाई हो दिए जलाएंगे तो समझो 69 साल हो गए, अब 70वां साल आज शुरू होता है तो 69 दिए तो जलाएंगे समिति वाले और 70वां दिया भी कोई जला ले तो हो गया बाबा जन्मदिवस बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, ज्ञान सुखदाई हो। हम अपने तरफ से नहीं मनाते लेकिन आप लोग जो केक काट काट करते इसलिए हमने स्वीकृति दी कि चलो भाई ऐसा ही कर दो। आ जाओ 5-7 आदमी।
ओम यदायुष्यम चिरम देवा सप्तकल्पांत जीविशो ददुस्तेनायुषा युक्ता जीवेम शरद शतम दीर्घा नागा नगा नद्यो नंता सप्तार्णवा दिश अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शरदशतम् सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च अविनाश्यायुषा तद्वज्जीवेम शरदशतम् ॐ शतम् जीवन्तु भवन्तः। ॐ नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य धर्मशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ वेदवेदान्तकोविद सर्वशास्त्रप्रवक्तारं तं नमामि गुरुं परम् देवानां च ऋषीणां च गुरु कञ्चन सन्निभम् बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि गुरुं परम् ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि धूप दीप के वातावरण में सात्विकता ही लंबा श्वास लो। मैं उस सच्चे परमात्मा का ही हूं जो आत्म रूप में बैठे। मेरा अहम नकली है लेकिन जहां से अहम जीता है वो मेरा ईश्वर सत्य है।
श्वास लेकर अपने सत स्वभाव में रुक जाओ, एक मिनट बस। जो सत है वो चेतन है, वह ज्ञान स्वरूप है, अमर है। नकली अहम तो रोज मरता रहता है दुखी सुखी, लेकिन वो असली मैं में मैं शांत हो रहा। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मरने के बाद भी रहता है, मन के दुख को भी जो जानता है, शरीर की बीमारी को भी जानता है, वो मैं चैतन्य आत्मा। जैसा संत लोग अपनी असली मैं में विश्रांति पाते हैं, ऐसे ही हम पाए। आप श्वास छोड़ दो, मैं मेरा तेरा, निंदा स्तुति सब स्वप्ना, परमात्मा अपना। फिर से श्वास लो, रोको। मैं शाश्वत आत्मा परमात्मा का, जिसका जन्म कर्म दिव्य है, ऐसे गुरु का हूं, ऐसे परमेश्वर का हूं, जिसका जन्म जन्म कर्म बंधन से है, वासना कर्म बंधन से, ऐसे मैं को मैं त्यागता हूं और असली मैं में नकली मैं को अर्पित करता हूं। असली मैं में टिको, नकली मैं को श्वास के द्वारा बाहर छोड़ो। ऐश, मैं दुखी, मैं सेठ, मैं साहूकार, मैं छोटा, मैं बड़ा, ये नकली है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। फिर से श्वास लो 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 और रुक जाओ। आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप, सुख स्वरूप, जिसमें मेरे गुरु जी टिके, जिसमें मेरे कृष्ण जी टिके, जिसमें मेरे तुकाराम और राम जी टिके, उस असली मैं में हम भी टिकने का अब लाइसेंस पा चुके हैं, सम्मति पा चुके हैं। भगवान और संतों का अवतरण मनाने का कारण ही है कि हमको भी वो सम्मति पत्र मिल जाए। मिल रहा है, हम नकली मैं में नहीं उलझेंगे, असली मैं में अपने नकली मैं को डुबा देंगे। फिर छोड़ दो श्वास, मेरा तेरा, पुण्य पाप सुख दुख जा। सदा रहने वाला परमात्मा सत्य है, आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य, हम उसमें टिकेंगे। रुक जाओ अपने सत्य स्वभाव में, अपने गुरु प्रसाद में, समस्याओं का समाधान, पापों का अंत, निश्चिंत जीवन, निर्भीक जीवन, निरहंकारी जीवन, निर्दोष जीवन, शुद्ध मय में है, आत्मा में है, परमात्मा में है। जीव में गड़बड़ी है, रोके रखो शुद्ध में अपने को। अब धीरे धीरे छोड़ो श्वास। तू प्रेम स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू करुणा वरुणालय है, तू गुरु रूप में बरसता है, कृष्ण रूप में बरसता है, राम रूप में बरसता है, अंतर्यामी रूप में बरसता है, अनेक रूपों में बरसता है। हे भक्तवत्सल, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे आनंद देवा, हे माधुर्य देवा, हे गुरु मावली, मधुमय भाव, चिन्मय भाव, सुखमय भाव, शांतिमय भाव, प्रभु प्रीतिमय भाव, ओम ओम आनंद ओम, ओम ओम माधुर्य ओम, ओम ओम गुरुजी ओम, ओम ओम प्रभुजी ओम, ओम ओम अवतार स्वरूपा ओम, ओम ओम प्रेम रूपा ओम, ओम ओम ज्ञान रूपा ओम, ओम ओम मद आत्म रूपा ओम। हे ब्रह्मा, एक तो आत्मा, दूसरा शरीर और तीसरा जीव। जीव झूठा, आत्मा सच्चा और शरीर सपना। शरीर बदलने मरने वाला है, जीव कुदाकूद करता है दिखने वाला है, लेकिन जिससे दिखता है वो मेरा में उसका बॉस। एकदम सीधा निशाना था, जो तिलों में तेल, चकमक में आग, तेरा रब तुझ में है, जाग सके तो जा। भजताम प्रीति पूर्वकम, हे मेरे सतगुरु देवा, जो गुरु को अकर्ता, अभोक्ता और सुख रूप, आत्म रूप नहीं मानता, वो ईश्वर को क्या जानेगा निगुरा, और अपने को क्या मानेगा निगुरा। निगुरा एक गाली है, भले तो निगुरा है। आजकल बोलते हैं ये तो राजकारणी है, ये भी एक गाली हो गई। ऐसे निगुरा भी एक गाली हो गई। शिव जी ने पार्वती को कहा निगुरा नहीं रहना चाहिए, वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाए। माँ काली ने रामकृष्ण को तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा दी। भगवान विट्ठल ने नामदेव को शिव बाग खेचर से गुरु ज्ञान लेने की आज्ञा दी। यह गुरु ज्ञान है, एक प्रकृति है, एक आत्मा है और एक जीवात्मा है। जीवात्मा आत्मा वही सब में है तो परमात्मा है। तो प्रकृति बदलती है, जीव भी कूदता है, लेकिन कोई अबदल है, सीधा है एकदम। शरीर बदला वो भी जानते हैं, मन बुद्धि और जीवात्मा बदलता है वो भी जानते हैं। तो बदलाहट को जो जानता है वो अबदल है। इतना नेड़े सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। आप सभी को देश विदेश में जो लोग भी उत्सव मना रहे हैं, यही संदेश है कि आप परमात्मा में विश्रांति पालो। समय बहुत तेजी से बीता जा रहा है, पतन का युग बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। उत्थान वाले अपना उत्थान कर लो तो कर लो। तो भागवत के नौवें स्कंद के दसवें अध्याय में आया कि भगवान राम को दुख हुआ कि नहीं हुआ, पीड़ा हुई कि नहीं हुई। भगवान राम को अगर दुख और पीड़ा नहीं हुई तो भगवान राम सीता वियोग में जो दुखी दिखाई दे रहे हैं, हे लता, हे वृक्ष, हे खग मृग, हे मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे लता, हे वृक्ष, हे खग मृग, हे मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीते, हाय सीते, भाई लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। भगवान को दुख हुआ दिखता है, भगवान विलाप करते हुए दिखते हैं, भगवान चिंतित दिखते हैं, लेकिन भगवान श्री राम अवतार है, विरक्तों को उपदेश देते हैं कि अगर संसार का सुख और गृहस्थी जीवन में आए तो भगवान को भी रोना पड़ता है और विघ्न बाधाओं में आना पड़ता है। और गृहस्थियों को उपदेश दिया कि अगर अपनी पत्नी संकट में है तो अर्धांगनी संकट में है तो सेतुबंध रामेश्वर का पुल भी बनाओ, रावण से भिड़ना पड़े तो भिड़ो और हाय सीते सीते करके उसके लिए विलाप करना पड़े तो करो, अपना कर्तव्य निभाओ। गृहस्थियों को कर्तव्य निभाने का उपदेश और विरक्तों को त्याग का उपदेश देने वाला ये राम अवतार हाय सीते हाय लक्ष्मण। सामान्य आदमी के सीता जी चली गई मेरा क्या होगा, इसलिए रोएगा। सामान्य आदमी ग्वाल मित्र चले गए अब मेरा क्या होगा, इसलिए रोते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जब भागा दौड़ी करते हैं तो मेरे भक्तों को कष्ट न पड़ जाए मेरे होते हुए। तो अवतार संत, नित्य अवतार संतों का और नैमित्तिक अवतार भगवंतों का, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, अंश अवतार, लीला अवतार, आयुध अवतार, प्रेरणा अवतार, अंतर्यामी अवतार, इस प्रकार भगवान के कई अवतार होते रहते। वे धन भाग्य जो उन अवतारों का फायदा लेकर आप भी अपना जीवन सफल कर ले। आप सबको राम राम, नारायण, जय जय, हरि ओम।